खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ निकालें पहला करंथियों उसका 4 बाप उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे। पालूस रसूल ईमानदारों को कहता है कि कोई तुमको बेफायदा बातों से गुमराह ना करे। हमने पिछले दिनों में सीखा था उस सेहरे के बारे में कि वो सेहरा जो मुरझाता नहीं, वो सेहरा जो कायम रहता है, जिसे ताज भी कहा गया है। सेहरा जैसे शादी के दिनों में दूल्हे के सेहरे सिर पर लगाया जाता है। और मुझे याद है कि एक ख़ानदान के घर में मैं गया और उनका सेहरा एक मकान के कमरे के नुक्कड़ में लगा हुआ था और उनसे पूछा कि कितने साल हुए हैं आपकी शादी को। 20 साल। और वो सेहरा वहाँ पर मौजूद था, लेकिन वो मिट्टी से और बहुत दूसरी चीज़ों से भरा हुआ था। उसका रंग जाता रहा, उसकी जो खूबसूरती है उसमें कमी आ गई, और उसकी जो पत्तियां थी, जो चमकने वाली तमाम चमकें थी, वो ख़त्म हो गई। तो पालूस रसूल भी कहता है कि हम ऐसे सेहरे के लिए काम नहीं करते जो मुरझा जाता है, जिसकी रौनक जाती रहती है, जो सूख कर फिर ख़त्म हो जाता है, बल्कि हम उस सेहरे के लिए काम करते हैं जो मुरझाने का नहीं। सो इसीलिए पालूस रसूल पहला करंथियों उसका 4 बाप उसकी 5वीं आयत में इस सच को बयान करता है कि जब हम खुदा पाक की हजूरी में होंगे, जब उसके सामने खड़े होंगे, तो हर एक की तारीफ उसके काम के मुआफिक की जाएगी। हर एक ईमानदार को खुदावंद यीशु मसीह उसकी तारीफ करेगा उसके काम के मुआफिक। इसलिए पहला करंथियों 4 बाप उसकी 4:5 को जब पढ़ते हैं, आए पहली आयत से पढ़ें ताकि हमें पता चले कि पालूस रसूल किस भेद के बारे में बात कर रहा है। पहली आयत में पालूस कहता है, आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझें। और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले, लेकिन मेरे नज़दीक ये नहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसानी अदालत मुझे परखे, बल्कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता, मगर इससे मैं रासबाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला खुदावंद है। बस जब तक खुदावंद ना आए, 5वीं आयत, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा, और उस वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। पालूस रसूल जब इस कलाम के हिस्सा को लिखता है तो वो कलीसिया के ईमानदारों को कहता है कि पहली बात, हम मसीह के खादम हैं, और खादमों में ये बात पाई जानी चाहिए कि वो क्या निकलें, दयानतदार, ईमानदार, बेईमान ना हो। अगर बेईमानी करेंगे तो उसका नतीजा क्या है, कुछ भी नहीं, खुदावंद से उनको कोई बरकत नहीं मिलेगी। इसीलिए दयानतदार लोगों के लिए पालूस रसूल कहता है, ईमानदारों के लिए ये बात कहता है कि तुम दयानतदार बनो, और कहता है कि मैं अपने आप को इसलिए नहीं परखता क्योंकि मैं खुदावंद अपने खुदा की अदालत के दिन का इंतजार कर रहा हूं। क्योंकि इस दौर में पालूस रसूल जब करिन्थस की कलीसिया में था तो वहां पर झूठे उस्ताद आकर पालूस रसूल के बारे में गलत अफवाहें फैलाते थे, उसे परखते थे। बताया जाता है कि पालूस रसूल मसीह की गवाही के बायस, मार खाने के बायस, उसका जो रंग रूप था वो खूबसूरती की, क्या कहते हैं, कि खूबसूरत नहीं दिखता था। एक बंदे को जब 5 कम पांच दफा मसीह के लिए कोड़े लगे तो उसके जिस्म की हालत क्या होगी, उसे तीन बार बैंत लगे उसके चेहरे उसके पीठ का क्या हाल होगा, और फिर उसे संसार किया गया। संसार यानी कि एक बंदा एक नुक्कर में खड़ा है और 100 के हिसाब से 10 के हिसाब से लोग क्या मारते हैं, उसे पत्थर मारते हैं, और उसे पत्थर मारे गए तो उसके चेहरे और रूप से क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी जो यीशु मसीह की नई फिल्म बनी थी, पैशन ऑफ क्राइस्ट। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के सही दुख दर्द को बयान किया गया है, जैसे यशाया नबी ने नबूवत की थी कि उसकी कोई शक्लो सूरत नहीं थी, वो आदमियों में मर्दूद और मर्द गमनाक का आशियाना था, कि आदमियों में उसे ऐसे ठहरा दिया कि जैसे कोई मर्दूद है जिसकी कोई अहमियत ना हो। सो पालूस रसूल कहता है कि मैंने मसीह के लिए बैंत खाए, कोड़े लगवाए, भूख का और संसार यानी के पत्थरों का सामना किया। सो पालूस की जिस्मानी हालत कहा जाता है कि वो निशानों से, जख्मों से और बहुत से क्या कह सकते हैं कि उसके चेहरे पर निशान थे यीशु मसीह की गवाही के। तो ये लोग कहते थे कि ये दिखने में तो खूबसूरत नहीं है, इसकी बातें बहुत अहम हैं। सो जो झूठे रसूल थे उस दौर में, वो पालूस रसूल पर क्या लगाते थे, अदालतें लगाते थे कि ये कैसे हो सकता है, ये अपने बदनी हालत से तो ऐसा नजर नहीं आता। पालूस रसूल आगे जाकर क्रीसिया को कहता है कि जब मैं पहली दफा तुम्हारे पास आया तो तुमने मेरी लुभाने वाली बातों पर या मेरे चेहरे मेरे रंग रूप पर गौर ना की, बल्कि इस बात पर कि मैंने दयानतदारी से खुदा का कलाम सिखाया। इसलिए पालूस रसूल कहता है कि मसीह का मैं खादम हूँ और हर एक मसीह के खादम को ये भेद दिया गया है कि वो उसकी मनादी करे और ख़ास कर दयानतदार निकले। सो पालूस को आजमाते थे, पालूस इसीलिए कहता है कि ये मेरे नज़दीक बहुत खफीफ यानी कि बहुत छोटी बात है, इसकी कोई अहमियत नहीं कि तुम या इंसानी अदालत मुझे परखे, बल्कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता, बल्कि मैं खुद भी अपने आप की अदालत नहीं करता, क्योंकि मैं किसका इंतज़ार करता हूँ। वो कहता है मेरा परखने वाला कौन है, खुदावंद है। और इसीलिए पांचवीं आयत पर आज हम गौर करेंगे कि कोई हमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे ताकि हम उस सेहरे की तरफ ना भागें जो सेहरा आरजी है, बल्कि उस सेहरे के लिए काम करें जो अबदी और ना मुरझाने वाला है। सो पालूस क्या कहता है, ये खुदावंद के तख्त अदालत के सामने का एक सीन है, जैसे हम ड्रामे में एक सीन करते हैं, ये वो सीन है, ये वो मंजर है जो ईमानदारों को मिलेगा। पस जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो, वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा। खुदावंद खुदा है जो तमाम बातों को जाहिर कर देगा। और क्या लिखा है, उस वक्त, ये वक्त किस वक्त का सीन है, जब यीशु मसीह तख्ते अदालत पर बैठा होगा, उस वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। पालूस रसूल की बेइज्जती लोगों की तरफ से थी, लेकिन उस दौर में जो वक्त आने वाला है उसकी तारीफ किसकी तरफ से होगी, खुदा की तरफ से। आज आप अगर रद्द किए जाते हैं तो घबराए नहीं, अगर आपको आज कोई सुनता नहीं तो परेशान ना हो, अगर आज आप ठुकराए जाते हैं तो इस बात से हौसला ना तोड़ें, यीशु मसीह रद्द किया गया, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, यीशु मसीह को बहुत सी दूसरी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। इसलिए हमें भी इस मकसद को पूरा करना है जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। अगर हम उस्ताद की तरह, जैसे कि पहला करंथियों उसका नौवां बाप हमें बयान करता है। ये ना मुरझाने वाला सेहरा वो है जो आसमानी है, मुरझाने वाला सेहरा वो है जो ज़मीनी है। हम इस ज़मीन पर रहते हैं और ज़मीन पर एक मकसद पूरा करने के लिए भेजे गए हैं, और वो है मसीह की मनादी, अपने ख़ानदानों में मसीह की मोहब्बत और माफ़ी और सुलह की खुशखबरी की बिशारत देना। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हमारी तारीफ हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी होगी खुदा की हुज़ूरी में जब हमारा काम ज़ाहर किया जाएगा। इसलिए पालूस रसूल कहता है दो मिसालें देते हुए, पहलवान की कि पहलवानी के लिए हर तरह की वो तैयारी, मक्खन पेड़े सब कुछ खाता है, दाव पेच सीखता है कि अपने मुखालफ को वो दाव मार के जीत जाए। जब वो अखाड़े में उतरे, हमें भी हमारी जंग किससे है? अबलीस से। मेरे साथ एक आयत देखें, आपको हैरानी होगी कि खुदा का कलाम किस तरह हमारी रहनुमाई करता है। दूसरा करंथियों उसका 10 बाप। पहलवान जिस्मानी लड़ाई लड़ते हैं, हमें जिस्मानी लड़ाइयां लड़ने की ज़रूरत नहीं। हमारी ज़िंदगी इतनी सी है, इतनी ज़िंदगी में हमें इतनी बड़ी कहानी लिखने की ज़रूरत है, और वो किस तरह होगा? जब हम मसीह को अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे और उसके लिए। खुदा का बंदा पालूस रसूल क्या कहता है, दूसरा करंथियों 10 बाप उसकी 3 आयत, ज़रा गौर से सुने। क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं। हम जिस्मानी तो हैं लेकिन हमें जिस्म के मुआफिक जिस्म के कामों को पूरा नहीं करना। जिस्म के काम क्या हैं? लड़ाई, झगड़ा, फसाद, जुदाइयाँ, बिद्दतें, नाच रंग, जादूगरी, चुगलियाँ, ये सब क्या हैं? जिस्म के काम हैं। इसकी आप खुद लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप लिस्ट बनाएंगे जैसे राशन की लिस्ट बनाते हैं तो आप वहाँ से शुरू होंगे तो ज़मीन तक लिस्ट होगी जिस्म के कामों की। इसलिए पालूस कहता है 4 आयत में, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने के काबल हैं। हमारे हथियार इस काबल हैं। हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? दुआ। अगर आप इबलीस के किलों को, जो झूठ की दीवारें उसने खड़ी की हैं, उसे ढाना चाहते हैं तो दुआ करें। ये ईमानदारों के लिए बहुत अहम है। जैसे कौवे का बच्चा जब उसे भूख लगती है तो वो अपनी माँ को, अपने बाप को कहता है, काएं 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 काएं, मैंने भूख लगी है। वैसे ही ईमानदारों को दुआ करना इतना ही ज़रूरी है। जैसे हमारे जिस्म में सांस है, वैसे ही मसीही ज़िंदगी में दुआ अहम है। जैसे हम सांस के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, वैसे ही दुआ के बगैर हमारी मसीही ज़िंदगी अधूरी है। आप अपनी ज़िंदगी में देख लें और बहुत से दूसरे मसीहियों की ज़िंदगी में देख लें जो खुदा को सिर्फ साल में एक दफ़ा टाइम देते हैं, और वो भी जब पैगाम का टाइम होता है, जैसे कि क्रिसमस की इबादत, नए साल की इबादत। तो क्या लिखा है? हमारे लड़ाई के हथियार खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने के। किलों की दीवारें बहुत बड़ी होती थी। पुराने हदनामा में हमें एक दीवार का जिक्र मिलता है, यरहू की दीवार। उस किले की, उस शहर की फसील इतनी बड़ी थी कि उसके ऊपर 2-3 रथ, जिसे आज के दौर में टांगा कहते हैं, घोड़े जोड़कर दौड़ाए जाते थे, इतनी चौड़ी वो दीवार थी। उस दीवार के ऊपर लोगों के घर बने हुए थे, लोग, शहर बसा हुआ था उस दीवार के ऊपर। उस दीवार को खुदा ने अपनी कुदरत से ढा दिया। सो हमारी दुआ किलों को ढा देने के काबिल है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने का वसीला बन सकती हैं जब हम रूह और सच्चाई से ये करते हैं। दुआ से ही एलिया ने, आप सबको सब वाक्यात याद हैं, बाइबल मुकद्दस इसीलिए हम सबको हमारे लिए लिखी गई है, हम सबको लिखी गई है, हमारे लिए लिखी गई है कि हम इससे जानें। और आगे क्या लिखा है, ना किलों को डाती है बल्कि पांचवीं आए, चिनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं। हर तसव्वुर को, हर सोच को, हर ख्याल को, हद बहकाने वाली उस बात को जो हमें खुदा की पहचान में रोकती है, उसे क्या करते हैं, ढा देते हैं। कभी आपको सोच आई है खुदा के घर आने से पहले कि छोड़ो, आज रहने दो, वहाँ पर जाके क्या करेंगे, मैं फलां बंदे को नहीं पसंद करता, वो वहाँ पर होगा, मैं फलां बेटे को, उससे मेरी लड़ाई हुई है, उसने मेरे पैसे चुरा लिए, फलां ने मेरे ये किया वो किया, गिरजामा घर में जाके क्या करेंगे। ये तमाम सोचें, तसव्वुर, ऊंची नीची सोचें जो खुदा की पहचान में हमें रोकती है, पालूस कहता है हम उसे ढा देते हैं। खुदा का घर दुआ का घर है, यहाँ पर हर एक आएगा। इसलिए जब भी हम खुदा की हजूरी में आएं, हर तसव्वुर को, हर ऊंची सोच को और उस चीज़ को जो खुदा के बरखिलाफ सर उठाए हुए है, उसे ढा दें। और यहाँ कर लिया क्या लिखा है आगे, और हर एक ख्याल को कैद करके। बहुत से ख्याल आते हैं, बहुत से ख्याल आते हैं, अभी भी हमारे जहन में कोई ना कोई ख्याल है, वक्त हो गया है, चाय बनानी है, ये हो गया है, वो हो गया, हर एक ख्याल को कैदी करें, कैदी करें। क्या लिखा है, हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। हम ईमानदारों को इस ज़मीन पर रहते हुए, हम ज़मीन पर रहते हैं ज़मीनी ज़िंदगी में आसमानी बातों के मुश्ताक। आप ऐसा कह सकते हैं कि हम आसमान की मखलूक हैं, ज़मीन पर आए हैं उस आसमानी खुदा के बारे में बयान करने के लिए। ये बातें बहुत गहरी हैं लेकिन सादा हैं, जब इनको समझ जाएंगे तो हम ही नहीं बल्कि बहुत सी जिंदगियों को बरकत मिलेगी। और इसलिए पालूस कहता है हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फरमाबरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला ले लें। एक दिन आएगा जब हम अपना वक्त पूरा करेंगे तो खुदा उन तमाम नाफरमानियों का बदला उनसे लेगा जिन्होंने आपसे, मुझसे, किसी से दगा किया है। खुदावंद उनका अंजाम उनको जाहिर करेगा, जैसे जबूर में हम गाते हैं, तू अपनी आँखियाँ तो हाल देखेगा शरीरां दा, पंजाबी, तू अपनी आँखियाँ तो हाल देखेगा शरीरां दा, खुदावंद बदला देंदा आप उना दी शरारत दा। सो आए हम खुदा के जुड़ चुके हैं और दुआ करें और खुदावन से कहें कि खुदा बाप हम सब की रहनुमाई कर।